कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत में पूर्ण तालाबंदी घोषित कर दी गई है। इस वक्त देखें तो समय की मांग यही थी, लेकिन क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी घनी आबादी वाले देश भारत के लिए इसके क्या मायने हैं आपके हिसाब से?
मेरे ख्याल से भारत सरकार जो है वो काफी एडवांस रही है स्टेप्स लेने में, और उनको लगा कि कोविड की अगर संक्रमण को रोकना है बड़ी तेजी से फैलने के लिए तो लॉकडाउन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जबकि अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई भी समुदाय में सामुदायिक केस या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नजर नहीं आया है, और भारत सरकार और सभी का मानना है इंक्लूडिंग UNFPA कि अगर ये 3 सप्ताह का लॉकडाउन किया जाता है तो स्थिति नियंत्रण में आएगी और कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि हम बाकी जो स्टेप्स है उसको भी अच्छी तरह से निभा सके। अगर आप कल का WHO की जो महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस, इन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि लॉकडाउन एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमने लिया है, पर ये अपने आप में सिर्फ काफी नहीं है और ये पूरी तरह से बीमारी को रोक भी नहीं सकता या मिटा भी नहीं सकता। इसके साथ साथ हम सबको, भारत सरकार को जो हम कदम ले रहे हैं, जैसे कि अभी टेस्टिंग की फैसिलिटी को बढ़ाना है या हर जो व्यक्ति है जिसमें कोई लक्षण नजर आ रहे हैं उस हर व्यक्ति की हमको टेस्ट करने की अपनी तैयारी करनी है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करना है। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन एक अच्छा विंडो अपॉर्चुनिटी है कि हम ये संक्रमण को रोकने की कमी ला रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने का समय दे रहे हैं।
लेकिन भारत की जैसे ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, तो स्थिति में उनकी जिंदगी और उनके जीवन यापन पर क्या असर पड़ रहा है?
देखिए, भारत की काफी बड़ी आबादी, लगभग 70% हमारी आबादी गांव में रहती है, और गांव में जब रहते हैं, यानी अगर आप देखेंगे गांव से हमारा माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, काफी लोग शहर की तरफ जाते हैं, शहर से या फिर किसी अन्य राज्य में काम की तलाश में जाते हैं, या फिर जो गांव में दूसरे व्यवसाय है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो लोग बाहर गए थे वो शहर से या दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब ये जो बाहर से वापस आ रहे हैं, बेसिकली जो अभी तक देखा जाए तो अर्बन फिनोमिना की तरह हम इसको देख रहे थे और सारी केसेस अब तक मोस्टली अर्बन सिटीज और उस एरिया से निकल रही थी, तो जब अब ये लोग वापस गांव में आ रहे हैं तो गांव वालों के लिए या ग्रामीण क्षेत्र के लिए अब एक खतरा बन हुआ है कि कहीं जो बीमारी अब तक ग्रामीण क्षेत्र में तक नहीं पहुंची थी, हो सकता है वो अब वहां तक पहुंचे। और दूसरी चुनौती होगी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सुविधाएं है हम उनको कैसे तैयार करें ताकि वो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनको सही सेवाएं दे सके, वहाँ उनकी टेस्टिंग कर सके या वहां पे ही उन ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, जो आज अभी तक मेरे ख्याल से हम उसके लिए भारत सरकार और सारी राज्य सरकार, UNFPA, बाकी UN एजेंसी सारे मिलके अब उस तरफ काम कर रहे हैं कि हम अपनी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या हमारा रूरल क्षेत्र है उसको इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करें, हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उनको तैयार करें, रूरल क्षेत्र में हम सही जानकारी की पहुंच करें, हमारे फ्रंटलाइन फंक्शनरीज है, आशाज है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो उनके माध्यम से हम कैसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए। बहुत बढ़िया एक तबका है भारत में या ग्रामीण क्षेत्र में जो किशोर किशोरियों का है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं भारत में जो किशोर किशोरियों से जुड़े हुए हैं, तो कैसे इनके नेटवर्क के माध्यम से हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचा सके, सही जो बिहेवियर है, सेफ हाइजीन प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट कर सके।
तो आप मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो हमें दिल्ली की और आसपास की खबरें मिल रही हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश में या वहाँ पर जो दूर दराज के वहाँ इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह काम चल रहा है, किस तरह जागरूकता फैलाने में यूएनएफपीए काम कर रहा है?
यूएनएफपीए और राज्य सरकार अभी यहाँ पे काफी सारे वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फ्रंटलाइन फंक्शनरीज के लिए। हमारे साथ बाकी यूएन एजेंसी भी जुड़ी हुई है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है। हम सारे मिलके सरकार की मदद कर रहे हैं कि हम जो दूर दराज के क्षेत्र है, जहाँ आज की तारीख में जब लॉकडाउन हो रखा है तो आपको इन पर्सन ट्रेनिंग या जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो हम वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से गांव के हर वो कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कोरोना COVID-19 क्या है, कैसे इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए, अगर कोई उनके यहाँ से बाहर से आया है तो कैसे उसके बारे में जानकारी आगे पहुंचानी है। साथ ही साथ काफी सारा IAC मटेरियल या सिंपल वीडियोज बनाए जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स बनाई जा रही है, जो सरकार के एंडोर्समेंट या अप्रूवल के बाद अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश की जा रही है कि हर गांव तक हम पहुंचे, सही जानकारी के साथ पहुंचे। साथ ही साथ WHO, यूनिसेफ और हमारा जो बाकी और UNFPA जो बाकी तबका है, वो रूरल फैसिलिटीज में कैसे सपोर्ट कर सकता है, उनकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है, क्या है और क्या क्या चीज़ों की वहाँ पहुँचाने की आवश्यकता है, ये सब हम UNFPA और बाकी संस्थाएं यहाँ की सरकार को मदद कर रही है।
इस COVID-19 ना फैले और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है और किस तरह की चुनौतियाँ भी हमें सामने आ सकती हैं आगे जाके?
देखिए, ये एक बहुत नया संक्रमण है और मेरे ख्याल से सारी ही एजेंसियां या सारे देश इस जैसे जैसे बीमारी फैल रही है ज्यादा उसके बारे में जानकारियां मिल रही है। बट अगर हम भारत या भारत के विस्तृत और हमारी आबादी को देखेंगे तो वाकई में चुनौतियां बहुत सारी है और सरकारें पूरी तरह से प्रयासरत भी है और वाकई में इस बार जिस हिसाब से अवेयरनेस या रेडीनेस है वो काबिले तारीफ है। बट आगे चल के अगर आप देखेंगे अभी तक हमारे जो टेस्टिंग की फैसिलिटीज थी, हमने अभी तक लगभग 25,000 टेस्ट किए हैं, जो अगर हमारी आबादी को देखेंगे तो आगे चल के हमको इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। और उसी राह में अगर आप देखते हैं तो ICMR या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अभी जो पहले बड़ी सीमित लैबोरेटरीज थी, बट आज उनकी संख्या बढ़ के 114 हुई है और उसमें कुछ प्राइवेट लैबोरेटरीज को भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं रिसेंट एक अच्छा डेवलपमेंट जो मैं वाकई में शेयर करना चाहूँगा, जो इंडिया ने अपना खुद का टेस्टिंग किट अप्रूव कर लिया है और उसके प्रोडक्शन की अनुमति दी है, तो आने वाले समय में उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्ट करें और उन तक पहुंच बनाएं। दूसरी चुनौती जो सामने आने वाली, जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत हो रहा है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में अदर स्टेट्स में गए थे और वो अब अपने अपने गांव में वापस लौट रहे हैं और उनकी जानकारी पूरी तरह से हमको अब कैसे इकट्ठा करनी है और उनसे कैसे निगरानी रखनी है, वो सिस्टम अब फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के माध्यम से हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आगे चल के कैसे उनको आइसोलेशन में रखेंगे, क्योंकि जो गांव की महिलाएं हैं खास करके या किशोरियां हैं जिनका यानी बाहर आना जाना या उनका स्टेटस अभी भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उनको कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो वो हो सकता है बड़े अस्पतालों में या जिला मुख्यालय में या दूर दराज में जाने में उनको दिक्कतें होगी। तो मेरे ख्याल से अब हम कैसे अपने ब्लॉक लेवल के यूनिट्स को तैयार करते हैं ताकि कम डिस्टेंस पे जाके ही उनको जरूरी सेवाएं मिल सके या उनको जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो मिल सके। तो मेरे ख्याल से अभी चुनौतियां तो जब हम सीख रहे हैं तो हर बार कुछ ना कुछ आते रहेंगे, बट जिस हिसाब से सरकार इस बार या सारी एजेंसियां यूएनएसडीए यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ सब एकजुट होके जिस तरह से सरकार के साथ इसके साथ खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो चुनौतियां शुरुआती दिनों में जरूर आएंगी, बट जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे जो सरकारी तंत्र है या हमारा समाज है मजबूत होता जाएगा। और उम्मीद है कि सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हम जब यूएनएसटी की तरह मैं अगर बात करता हूँ तो जो हम बात करते हैं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, तो हम चाहेंगे कि हम ना सिर्फ ओवरऑल स्वास्थ्य सेवा की बात करें बट ज्यादा ध्यान दें कि हम कैसे गर्भ निरोधक साधन हो गए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं, या फिर जो डिलीवरी केयर है या फिर गर्भवती महिलाओं की जांच है या नवजात शिशुओं की जांच है या उनके लिए जो सेवाएं हैं या सुरक्षित गर्भपात की अगर सेवाएं हैं वो कैसे हम सुनिश्चित करें, क्योंकि इस घड़ी में जब लॉकडाउन है लोग आने जाने में कतरा रहे हैं, तो हम इस सेवाओं को बाधित होने से कैसे रोके ताकि जो महिला का प्रसव होना है जिसको डिलीवरी की सुविधा चाहिए है उसको वो मिलती रहे और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलती रहे।